आज का जो हम विषय है और आपका ये लेसन के तहत हम बात कर रहे हैं, इस लेसन का नाम है मेंटेनेंस ऑफ प्रिमाइसेस। और ये जब वर्ड प्रिमाइसेस कह देते हैं तो ये सिर्फ घर से ही संबंधित नहीं रहता, कोई भी जगह कहीं पर भी हो। और आजकल इस पे काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हर चीज़ मार्केट से लेके क्लीन कर लेना काफ़ी नहीं होता है। बहुत आसानी से हम घर में चीज़ें करते हैं और उम्मीद है ये आप करते भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी लोगों को परेशान देखा है कि भाई इसमें दाग लग गया, इसमें ये हो गया, वो साफ़ नहीं होता है, क्या करें, और हमको दोबारा ख़रीदना पड़ता है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्या कर। तो इन सब की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये एक लेसन के तौर पर ही होम साइंस में सम्मिलित कर दिया गया है। होम साइंस बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि साइंस, और हर चीज़ में साइंस है। आप ऐसा नहीं है कि आप जो मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रास की चीज़ और सिल्वर की चीज़ दोनों ही एक तरीके से साफ़ कर लेंगे। आप अपने घर में भी देखते होंगे कि आपकी अगर रसोई में एक कढ़ाई ब्रास की है और दूसरी टेफ्लॉन की है, और आपके बर्तन कुछ जो हैं वो स्टील के हैं और कुछ जो हैं आपका जो तवा है वो आपका लोहे का है, तो क्या सिर्फ आप एक चीज़ से सारी चीज़ों को बराबर की लेवल पे चमका सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं? हकीकत में नहीं। हालांकि कॉमर्शियल जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको इस तरीके के यूज़ से बनाया जाता है कि बहुत वैरायटी ना यूज़ करनी पड़े, क्योंकि लोगों के पास बहुत अभाव होता है समय का, जानकारी का, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हर चीज़ हमको लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारी आवश्यकता है और सभी लोगों के पास वो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी महंगे भी होते हैं और कुछ लोग उनको भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, मगर हमारे कोर्स के तहत कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए गए हैं कि जानकारी के तहत आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के घर में फर्नीचर की बात करती हूँ, पॉलिश्ड वुड का फर्नीचर है, दूसरे के घर में केन का फर्नीचर है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, मगर पॉलिश्ड फर्नीचर और केन फर्नीचर को क्लीन करना दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों के अलग अलग तरीके हैं। तो उन चीज़ों को हम आज जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। और क्लीनिनेस की इम्पोर्टेंस हम पहले कई लेसन्स में बात कर चुके हैं, तो उस पर हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हर चीज़ को किस तरीके से क्लीन करा जाएगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वॉल्स और डोर्स को किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले हमें ये समझना है कि जनरली वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, डोर्स हैं किस मटेरियल के बने होते हैं। जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि, और उसके बाद ही ये तय होता है कि हमको क्लीनिंग एजेंट क्या इस्तेमाल करना है, वाटर में सोक करना है या नहीं करना है, ड्राई करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ें उसके रॉ मटेरियल पे निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमारा पेंटेड सरफेस होती हैं काफ़ी जगहों पे, बॉक्स हो सकते हैं, वॉल्स हो सकती हैं, उनको आप सिंपल सोप और वाटर से वॉश करके ड्राई कर दीजिए। ड्राइंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज उनकी जो शाइन है वो हमारी खराब होने लगती है। और कभी भी हम साथ में बात अवश्य करेंगे कि उनमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखी जाए। कभी भी आप हार्श ब्रश का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो पेंट हमारा उखड़ सकता है। दूसरे, आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है कि हम वॉलपेपर का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से जो कमर्शियल जगह है। घरों में भी हम घर को फोकस लेके चल रहे हैं, घरों में भी वॉलपेपर का इस्तेमाल अब कम नहीं है, वो भी होने लगा है। तो वॉलपेपर का मतलब है कि पेपर को हम पानी तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, और विद द टाइम ऑफ यूज़ जो है वॉलपेपर हमारा कहीं कहीं से फटने लगता है, तो पहले उसको आप फिक्स कर दें। उसके बाद आप सॉफ्ट कपड़ा लेके वाइप कर दें। कहीं कहीं पे अगर कप गंदा लगता है वहाँ पे आपके ग्रीस के दाग पड़ जाते हैं, या कोई चीज़ आप लगातार यूज़ करने पे आपके हाथ गंदे लग सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन क्लीन दैट। और क्लीनिंग करने के लिए अगर हम कोई ग्रीस एब्जॉर्बर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे टेलकम पाउडर हो सकता है, ब्रान हो सकता है, इस तरह की चीज़ें को हम, जैसे आप ये सोच लीजिए, जैसे आप पेपर को क्लीन करेंगे वो एक थिक तरीके का पेपर होता है, वहाँ पे आप उसको उस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको रबिंग या स्क्रबिंग नहीं करनी है। अब तीसरा जो मटेरियल नॉर्मली यूज़ होता है हमारी वॉल्स एंड फ्लोर्स में, वो होता है सिरामिक। टाइल्स का काफ़ी ज़माना है, काफ़ी लोग प्रोटेक्शन के लिए टाइल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत है, मगर उसकी जो रख रखाव है, क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है, उसमें हमें बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए काफ़ी लोग, मगर ऐसा नहीं है कि उनको भी आपको क्लीन नहीं करना पड़ता। ख़ास तौर से आपके अगर बाथरूम में है, किचन में है, या कहीं और हॉल में लगी है, तभी भी आप, मगर बहुत सिंपल तरीके से गर्म पानी में सिर्फ थोड़ा सा आप सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करेंगे या कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट करेंगे तो आप उसको हटा सकते हैं। और अगर कहीं पे स्टेन पड़ गया है तो वीक एसिड में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप विनेगर ले सकते हैं, जो वाइट विनेगर आता है, दैट इज़ गुड इनफ टू यूज़ दैट एज ए स्टेन रिमूवर। तो बहुत आसानी से मिल भी जाता है, मगर स्ट्रॉन्ग एसिड और लगातार एसिड हमें नहीं करना है। दूसरी बात हमें ख्याल रखनी है कि जब भी हम इन चीज़ों का, एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुरंत ही, जैसे ही आपका दाग क्लीन होता है, तुरंत ही हम प्लेन वाटर से उस एसिडिक इफेक्ट को हटा देंगे। ख़ास तौर से अगर वो एसिड हमारे ग्रूव्स में चला गया है, क्योंकि टाइल्स ऐसा नहीं कि आपका वन टाइम है, टाइप डिफरेंट साइजेस में आती है, तो बार पास पास जोड़ के वो लगाई जाती है फ्लोर्स पर, वॉल्स पर, बीच में आपने देखा होगा ग्रूव्स बनी होती हैं। अब अगर वो ग्रूव्स लगातार एक्सेस एसिड से इस्तेमाल कर करके वो टाइल्स ढीली हो जाती हैं, वो निकल जाती हैं। और ऐसा कब होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड ना इस्तेमाल करें, और रेगुलर स्ट्रॉन्ग एसिड तो बिल्कुल भी ना करें। एक और तरीका बहुत आसान है करने का, आप जब एसिड लेते हैं उसको सिंपल एसिड, चाहे विनेगर ही हो, वो बहुत सेफ रहता है, कोई ज़्यादा हार्म नहीं, उसमें ही आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें या रोज़मर्रा खाने वाला सोडा डाल दें, तुरंत आपके एफर्वेंस होंगे। और उन जो जॉइंट्स हैं उसमें आप बड़े कपड़े से लेके लगा दें, बहुत जल्दी ही आपकी वो डर्ट ढीली पड़ जाएगी, और आप उसको पानी से धो दीजिए, और उसके बाद उसको ड्राई, जितनी वॉशिंग की चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप वॉश करके तुरंत रिंस करेंगे और ड्राई करेंगे, उतनी ही एक तो आपको दिखाई देने में अच्छा लगेगा, और उससे उस सरफेस का नुकसान कम होगा। एक और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो है हमारा मार्बल। मार्बल सबको अच्छा लगता है, कलर्ड भी आता है और वाइट भी आता है। जब हम यहाँ पर भी आप सिंपली जिस तरीके से आपने हॉट वाटर डिटर्जेंट से सिर्फ टाइल्स साफ करी हैं, उसको भी आप सिंपल वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, मगर वाइट मार्बल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वो समय के यूज़ के साथ साथ जो है वो येलोइश होने लगता है। तब आपको लगता है अरे हमने तो मार्बल लगाया था मगर ये तो उतना साफ नहीं चमक रहा है, तब आप सिंपल एसिड का इस्तेमाल करेंगे। एसिड में अगेन आई विल सजेस्ट द विनेगर, और साथ में उसको तुरंत प्लेन वाटर से वॉश करके ड्राई कर लीजिए। तो विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम जो है आपका लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विनेगर भी, जिससे आपका वो मार्बल जो है आपका स्टेन फ्री हो जाएगा, और विनेगर और लेमन जूस आपका ब्लीच की तरह काम करेगा। सीमेंट जो पुराने घर हैं या कुछ एरिया में, ऐसा भी होता है कि घर के डिफरेंट एरियाज में हम डिफरेंट टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट भी उनमें से एक मटेरियल है जो फ्लोर्स में तो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, तो उसको भी आप सिंपल वाटर से, डिटर्जेंट से साफ कर सकते हैं। और रोज़मर्रा जैसे आप फ्लोर है तो रोज़मर्रा जैसे आप पानी का पोछा लगाते हैं, उसमें आप दो बूंदे अगर डिटर्जेंट की डाल लेंगे, थोड़ा अगर नमक डाल लेंगे, तो आपकी वो चमक बनी रहती है। जब मैं फ्लोर्स की और वॉल्स की बात कर रही हूँ, तो आप विशेष कर ये ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप बीच बीच का तो आप साफ कर लेते हैं, मगर जो असली गंदगी जो ओवर द ईयर्स जमा होती है, वो होती है कॉर्नर्स में, ग्रूव्स में, या कोई हमारा हिस्सा बीच में क्रैक आ गया है, तो उन जगहों को आप स्पेशली देखिए, क्लीन करिए, और ज़रूरत पड़े तो अगर वो क्रैक्स बड़े हैं तो उनको आप रिपेयर करा लीजिए, उसको फिल कर दीजिए, क्योंकि वही वो क्रैक्स हैं, हमारे ग्रूव्स हैं, कॉर्नर्स हैं, जहाँ हमारी डर्ट इकट्ठी हो जाती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वहीं पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, वहीं पे चींटियाँ का घर बन जाता है, रोडेंट्स का घर बन जाता है, तो वो आपके लिए और नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो एक बार ये अगर फ्लोर में घर बन गया तो आप समझ सकते हैं वो जब तक आप उसको रिपेयर नहीं कराएंगे वो और बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं, तो जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें भी हमें साथ में ध्यान रखनी होती है। अब हम जब फ्लोर की बातें कर रहे हैं तो आपने काफ़ी घरों में देखा होगा कि सिर्फ हमारे टाइल्स या सीमेंट नहीं है, उसके ऊपर भी हम कई बारी कवरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम एक वर्ड में फ्लोर कवरिंग का नाम देते हैं। फ्लोर कवरिंग भी कई मटेरियल की होती है, और सिंथेटिक भी हो सकती है और क्लॉथ की भी हो सकती है। और जनरली क्या करते हैं हम लोग, दरियां बिछा लेते हैं, कारपेट बिछा लेते हैं, कुछ हम मैटिंग बिछा लेते हैं जो कॉयर की हो सकती है, इस तरह की चीज़ों का हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। तो हम आते हैं कि कारपेट अगर हम बिछा रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मटेरियल क्या इस्तेमाल किया गया है। कारपेट का मटेरियल वुलन भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, तो उस तरीके से ही हम उस कारपेट को बनाएंगे। कारपेट स्पेशली हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जब कारपेट आपने देखा होगा कि उसमें जो धागे या वीव होती है वो उठी हुई होती है, और उस उठे हुए से हमारी जो डस्ट है उसमें अटक जाती है। तो डस्ट कैसे निकालेंगे, आसान नहीं होता है कारपेट क्लीन करना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उसको डेली थोड़े हार्ड ब्रश के साथ उसको डस्टिंग की जाए। ऐसा नहीं कि आपने फूल झाड़ू उठाई, जैसे फ्लोर करा वैसा ही उसमें कर दिया, उससे उसकी कोई डस्ट नहीं निकलेगी, उससे सिर्फ आपके जो मोटा मोटा जो कूड़ा है, सपोज कागज के टुकड़े हो गए या खाने का टुकड़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, और तुरंत वहाँ से हटा देनी चाहिए और रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। अब इसके तरीके भी बहुत सारे आ गए, भाई कारपेट क्लीनर्स आ गए हैं, कारपेट शैम्पूज आ गए हैं, क्योंकि कारपेट्स पे कई बार हमारी कुछ ना कुछ गिर भी जाता है, क्योंकि वो नीचे बिछा हुआ है, अगर घर में कोई भी है, बड़े हैं बच्चे, तो कई बार कोई चीज़ें गिर जाती हैं। तो वैक्यूम क्लीनिंग का भी सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, क्या चीज़ आपके पास है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है। मगर एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो कि आपके घर में भी शायद हो सकती है, या एक दो चीज़ आप बाहर से लेके उसको क्लीन कर सकते हैं, ख़ासतौर से अगर उस पर कोई दाग पड़ गया है तो क्या करना है, आप उसको बराबर मात्रा में सॉल्ट, बोरेक्स या बोरिक पाउडर और विनेगर, ये इन तीनों चीज़ों का आप पेस्ट बना लें। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1/4 कप ऑफ सॉल्ट, 1/4 कप ऑफ बोरिक पाउडर एंड 1/4 कप ऑफ विनेगर, एंड तीनों का पेस्ट बना लें, और जहाँ पर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है वहीं पे उस पेस्ट को लगा दें, चाहे वो आप शाम को लगाएं, ओवरनाइट छोड़ दें, कम से कम 8-10 घंटे उस पेस्ट को वहीं पे लगा हुआ छोड़ दें, फिर उसको आपको वहाँ से हटा लीजिए और उसको या तो क्लीन कर दीजिए पानी से कर दीजिए, या आप उसको ड्राई हटा दीजिए, पानी से भी आप उसको पूरा हटा सकते हैं, और उसके बाद उसको ड्राई कर दीजिए, चाहे आप उसको आयरन कर दीजिए, चाहे आप उसको हेयर ड्रायर अगर आपके पास हो तो उससे आप ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। कई बार कॉर्नफ्लोर भी आप उसमें प्लेन कॉर्नफ्लोर ऊपर से छिड़क सकते हैं, थोड़ी देर आप उस पर छिड़किए, उसके बाद आप हार्ड ब्रश से उसको स्क्रब कर दीजिए, तो आपका ये क्लीन हो जाएगा। और बीच बीच में कारपेट को पलट कर उल्टी तरफ से आप उस पर बीटिंग करें, चाहे आप अपने किसी झाड़ू की उल्टी तरफ से कर सकते हैं, झाड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कितना सारा कूड़ा आपके फ्लोर पर आ जाता है, उसको आप फिर हटाकर साफ करके फिर से आप सीधा कारपेट बिछा सकते हैं। एक और बात ख्याल रखने की है, कभी भी कारपेट में कोई ब्लीचिंग एजेंट या लिक्विड केमिकल्स इस्तेमाल ना करें, उससे आपका कारपेट ख़राब हो सकता है। और कई बारी कारपेट जैसे विंटर्स में अधिक बिछा लिया, या कभी कोई गेस्ट आए तब आपने बिछा लिया, तो कहीं ना कहीं तो वो घर में आप रखते हैं, तो जब आप स्टोर करें तो एक तो हमेशा रोल करके रखें, और उस रोल में अगर आप नेपथलीन बॉल्स का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी कारपेट आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब कारपेट में चूंकि वुल है या कॉटन है इतना ज़्यादा होता है, और तो उसमें कीड़ा जल्दी लग जाता है और आपका कारपेट ख़राब हो जाता है। और स्टोर करने से पहले जो है कारपेट को आप क्लीन करें तो बेहतर होगा। और जहाँ पर कारपेट और क्यों गंदा होता है, मैं आपको बताऊँ कि जनरली क्या होता है, अगर आपने शूज़ पहन के कारपेट इस्तेमाल कर रहे हैं, गीले डर्टी आपके शूज़ हैं, तो आपका कारपेट जल्दी ख़राब होता है। या लगातार आप वहीं बैठकर खाना खा रहे हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है कि कब उसमें चाय गिर गई, कब कॉफ़ी गिर गई, कब कोई करी गिर गई, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, उस केस में हमारे कारपेट्स बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो तुरंत उन मटीरियल को उस कारपेट से हमें ब्रश ऑफ करेंगे तो कारपेट हमारा ज़्यादा दिन तक मेंटेन रह सकता है, क्योंकि कारपेट भी कोई हमारा इनएक्सपेंसिव आइटम नहीं है, एक्सपेंसिव आइटम है, बहुत रेंज में अवेलेबल है, तो इसलिए उसका रखरखाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम दरी बिछाने की बात करते हैं तो दरी तो आप उठा के रोज़मर्रा झाड़ सकते हैं, फिर वहाँ से क्लीन करके दोबारा बिछा सकते हैं, और जब दरी गंदी हो जाए तो जैसे आप मोटी चादर धोते हैं उसी तरीके से आप दरी को भी धो सकते हैं। अगर आपने किसी कॉयर की या बांस की बनी हुई, बहुत तरीके के मटेरियल आ रहे हैं, मैटी के नाम से आते हैं या चटाई के नाम से, हमारे हाउसेस में बहुत पॉपुलर है, इवन प्लास्टिक की चटाइयाँ भी आने लग गई हैं, तो वो भी आप मटेरियल की को देख के ही क्लीन करें। जैसे सपोज़ आपकी उसकी चटाई है, बैम्बू की चटाई है, जो बारीक बैम्बू आता है या उसका फाइबर निकालते हैं उसे चटाइयाँ बनाते हैं, तो उसको आप कभी भी गीले पानी से साफ़ ना करें। अगर किसी वजह से आपको करना भी है तो आप थोड़ा सा उसमें पानी से सिर्फ स्पॉन्ज करेंगे, उसको इमीडिएटली ड्राई कर देंगे, अदरवाइज़ वो आपकी चटाई वो सोक कर लेगा पानी और वो ख़राब हो जाएगी आपकी। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, और प्लास्टिक की चटाई को आप पानी से और सोप से आराम से फ्रीक्वेंटली धो सकते हैं, इतनी जल्दी चटाइयाँ नहीं ख़राब होती हैं। एक और चीज़ है जो हम घरों में पहले तो बहुत इस्तेमाल करते थे, अब चूंकि टाइल्स काफ़ी लगने लग गई हैं, मगर फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमारे यहाँ लिनोलेइक या विनाइल की जो फ्लोर कवरिंग है वो काफ़ी इस्तेमाल होती थी। आपने कभी देखा होगा या किसी के घर देखा होगा, बड़ा उनका फ्लोर बड़ा प्रिंटेड सा है और आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये प्रिंट कहाँ से आया। तो वो प्रिंट क्या होता है कि वो पूरा वॉल टू वॉल हम विनाइल या लिनोलियम की कवरिंग फ्लोर पर लगा देते हैं, और जब कट फट जाती है उसको पूरा उखाड़ते हैं फिर दूसरी लगाई जाती है। तो जैसे हमने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से फ्लोर की कवरिंग के लिए लिनोलियम इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें आप बहुत आराम से वेट क्लॉथ से क्लीनिंग हो जाती है। ये भी जनरली एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए या मेंटेनेंस रेगुलर कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके लिए कभी भी एल्कली इस्तेमाल ना करें। जैसे हमने अभी कारपेट को बताया था कि आप बोरिक एसिड और ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और ना ही इसको मोड़ने की कि भाई धो दिया है हमने पानी से, इसको उखाड़ा और फिर आपने स्क्वीज कर दिया, ऐसा नहीं हूँ। अब एक और चीज़ हमारा फ्लोर्स में इस्तेमाल करते हैं, डोर मैट्स या पूरा का पूरा मैटी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और ये जनरली जो बनता है डोरमैट, ये कोकोनट फाइबर से, आपने कॉयर वर्ड सुना होगा, उससे बनता है। आजकल बहुत सारी और भी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं जो सिंथेटिक हैं, उसमें बनता है, या जो ओल्ड फाइबर हमारे बचे हुए होते हैं इसने वो डोरमैट्स बनाने में इस्तेमाल कर लेती है इंडस्ट्री। और तो हमें हमेशा क्या रॉ मटेरियल यूज़ हुआ इस पर बहुत ध्यान देना होता है। सिंपल सा तरीका है, डेली आप उसको पलटिए, पीछे से बीट करिए और उसके जो लूज डस्ट है वो बाहर निकल जाएगा, और ज़्यादातर उसको कोई वो नहीं होता है। अगर गीला हो गया है, किसी कॉटन का है, वुल का है, कॉटन का, वो तो आप एज़ यूज़ुअल जैसे डस्टर धोती हैं इसको भी आराम से धो सकती हैं। इसमें आप हार्ड ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉश करने के लिए, तभी वो पूरी की पूरी डर्ट बाहर आएगी। और इसको वॉश करने के लिए एक और तरीका, पहले आप सिंपली प्लेन वाटर में उसको डालिए, उसका पानी आप देखेंगे कितना गंदा निकलता है, क्योंकि वो रेगुलर यूज़ होता है आपकी चप्पल से, आपके जूते से, जो डर्ट है कि उसका डोरमेट का पर्पस ही है कि बाहर की गंदगी हमारे घर अंदर ना आए, तो उसके अंदर इतनी डर्ट बैठ जाती है और उसको आप भिगो दीजिए पानी फेंक के, फिर दोबारा वार्म सोपी वाटर में डालकर उसको वॉश कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी वॉल्स के लिए, फ्लोर्स के लिए किस तरीके से हम कार्य करेंगे। तो अब आता है हमारे घर के अंदर, हमारे प्रमाइसिस के अंदर हमारा फर्नीचर भी होता है, और जनरली फर्नीचर हमारा वुड से बना हुआ होता है, और चीज़ें भी आती हैं हमारे उसके लिए। चलिए देखते हैं हम उसको किस तरीके से, वुडन सरफेस को किस तरीके से साफ करेंगे। सबसे पहला काम, सिंपल रेगुलर क्लीनिंग इज मस्ट। सेकंड, आप माइल्ड सोप एंड वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर को लेंगे और उससे आप पूरा का पूरा उसको साफ कर देंगे, और अगर चाहें तो उसमें थोड़ा सा आप फ्यू ड्रॉप्स विनेगर डाल सकते हैं। और कभी भी वुडन सरफेस को आप स्क्रब ना करें, और जो भी आप वॉशिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, वो अलोंग द ग्रेन करें। अलोंग द ग्रेन का मतलब होता है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि हमारा ये सीधी की सीधी लेफ्ट साइड ग्रेन है उस वुड का या राइट साइड है, वो आपकी जो लाइनिंग होती है उससे आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, वुड में हम पॉलिश वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम वुड का फर्नीचर बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए हम पॉलिश कर देते हैं। फिर क्या, पॉलिश वाले को साफ करना आसान बहुत है, सिर्फ मगर सॉफ्ट कपड़ा इस्तेमाल करें, फेनल का जैसे होता है, जैसे शूज़ के लिए जो क्लॉथ होते हैं वो होते हैं, या पुरानी आपकी कॉटन की आपकी साड़ी हो, कोई भी जेंट्स धोती हो, उससे आप अच्छे से कर सकते हैं। मगर आप जब, अगर कपड़ा, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, जैसे टॉवल है, रोए वाला टॉवल है, पुराना हो गया, उससे आप पॉलिश का साफ करते हैं, नहीं, क्योंकि उस वो रफ हो चुका है, हार्ड हो चुका है, दैट एक्ट्स लाइक अ अब्रेसिव मटीरियल, सो डू नॉट यूज़ दैट। तो उसको आप अवॉइड करें, सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करें। जब पॉलिश है और आपकी सपोज डाइनिंग टेबल है या आपकी चेयर है, वहाँ पे कई बारी हमारे दाग भी पड़ जाते हैं पॉलिश पे, कई बारी आपका गीला ग्लास वहीं पे रह गया, आपके कप, चाय का कप वहीं पे ही रह गया, तो आप देखेंगे बहुत सारे वाटर रिंग्स, चाय के कप के दाग पड़ जाते हैं। अब वो आपके साफ ही नहीं होते हैं, अब क्या करेंगे फिर उसको। टेप के दाग बहुत कॉमन है, आपकी जो टेबल है, स्टडी टेबल है, टेप है, रबर है, कुछ भी चीज़ के आपको दाग दिखाई देते हैं, तो वो सिर्फ आपकी पॉलिश से, वाटर से, सोप से नहीं जाते हैं। तो क्या करना है हमको, तो आप माइल्ड सॉल्यूशन टर्पेंटाइन का ले सकते हैं, अमोनिया का ले सकते हैं, मिथाइलेटेड, अभी ये सब चीज़ें ओपन मार्केट में आराम से मिल जाती हैं, आप इनको क्लीनिंग एजेंट्स की तरह से घर पे रख सकते हैं और फिर उसको काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो हमारी वुड सरफेस है, क्योंकि हम वुड के बारे में बात, आपने फर्नीचर कैसे क्लीन करना है, दाग कैसे क्लीन करने हैं, आपने समझ लिया। अब वुड और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हमारी विंडो सिल पे, हमारी जो दरवाजे बने हुए हैं, भले ही आप उसमें शीशा लगा दें, नेट लगा लें, मगर किनारे पे आपकी वुड है। तो क्या करना है आपको, जैसे हमने पहले प्लेन वुड को साफ करा था, उस तरीके से करें, और इस पे रेगुलर पॉलिशिंग या पेंटिंग, वॉट एवर इट इज़ योर थिंग, यू नीड टू डू इट रेगुलरली और पीरियडिकली वेन एवर नीडेड। एक और तरह का वुड है जो फिर से मेंटेनेंस फ्री कहलाता है, वो है सनमाइका। मगर ऐसा नहीं कि आप सनमाइका कभी साफ ही नहीं करेंगे, उसको भी आप गीले कपड़े से आप मार दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जो विनियर होता है उसमें आप वैक्स पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी इसमें कोरोसिव मटेरियल इस्तेमाल ना करें, कुछ भी अगर गिर जाता है तो आप तुरंत इसको गर्म गीले कपड़े से कर दीजिए। अगर हल्का सा वार्म वाटर भी लेंगे या कोल्ड वाटर, एनी काइंड ऑफ वाटर विल डू, मगर ये हमेशा ध्यान में रखें, कहीं पे भी आपने सोप इस्तेमाल करा है तो सोप के कोई भी रेजिड्यूज़ आपके वहाँ पे नहीं रहने चाहिए किसी भी सरफेस में, नहीं तो वो धीरे 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 वो आपकी सरफेस खराब होने लगेगी। एंड ऑलवेज कीप ऑल द सर्फेसिस ड्राई। अभी तक हमने बात करी है कि फ्लोर्स में क्या क्या है, वुड को किस तरीके से किया है। तो इसके अलावा जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है सरफेस है, वो है मेटल
जी,
चाहे वो हैंडल हो, चाहे आपकी किचन का यूटेंसिल हो, चाहे आपके यहाँ आर्टिफैक्ट्स हो, इनमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया। और मेटल्स जनरली आपने देखा होगा, ब्रास है, कॉपर है, स्टील है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, तो ये मेटल्स जो हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मोस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स समवेयर और दी अदर आर यूज इन डेली लाइफ इन एवरी अदर हाउस ऑल्सो। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज क्लीनिंग और मेंटेनेंस, दे आर टू टर्म्स, क्लीनिंग इज वन एंड मेंटेनेंस इज वन। एंड वन टाइम इफ मेटल इज मोल्डेड और मेलिएबल और सम ब्रोकन, यू हैव टू गेट इट रिपेयर, नंबर वन। नंबर टू, वी विल टॉक अबाउट द ब्रास, कॉपर, समथिंग, हाउ टू क्लीन दैम, बिकॉज ब्रास गेट टार्निश very easily as soon as it is coming into the contact with the air. So how to clean that? Number one, you need to clean it regularly with the soft wet cloth and immediately dry it. If you are not drying the metal, it will get tarnished much more easily. Number one, you can use the weak acid, or in acid you can use the tamarind, vinegar, lemon juice. And you need to remember whether the brass is used for the your kitchen utensil or for the artifacts or any other article. If the brass pot for the decoration or as a planter, you can use the other acids also, but other commercial acids should not be used if you are having the brass in your kitchen utensils. That is number one care you have to use. Sometimes some of the brass articles or fancy articles have very fine engraving and they are very very difficult to clean it, so you have to remove all the dirt, all everything with the old toothbrush. Then only you must, either you can dip that article if it is good enough in size into the large bucket or whatever you have, into the acidic solution for some time. You can also use some kind of salt also along with it. You can make the mixture like 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of vinegar, mix it well, dip in the water for some time, then again brush it, clean it, and remember you have to rinse with the clean water, otherwise it will re-tarnish and acid will spoil your article. Next is, and you are also, rather you can use the brasso if the article is fancy, not the kitchen utensil. Brasso is a commercial cleaner for the brass. Now we talk about the silver. Silvo is also available as a commercial cleaner, but that should be used in a limited amount only. And silver, you can use the soda in hot boiling water. Dip those articles, clean it well, rub it well by using the mild plastic brush or old toothbrush according to the engraving it is having, and you must rinse it well with the plain water and dry immediately. I am pressing hard on dry immediately. That is one thing. Another article you frequently use is steel. And steel is generally used in the kitchen for the kitchen utensils. It's a plate, glass, spoons, very. So it is the simplest one to clean it. Either you use the cold water or warm water or hot water. Mix some detergent and wash it, clean it. And if it is a burnt, because sometime in the kitchen the articles or the metal is burnt, then you can use either the salt and boil it, or the cooking soda and boil it, or simple your detergent powder you can put into the water and boil it for 10-20 minutes all together, then cool it down and wash it as regular. But remember, soda if it is used on a regular basis will spoil the shine of the metal, so we must be very careful. Now another metal we use it, iron tawa, iron karhai is very very popular and common in most of the households. So what you will do it, what is the thing, you are using the plain cleaning material, no problem, But if it is not dried, it will get rusted. And that rust removal is another a big headache. So what you can do it, wash it, clean it, rinse it, dry it and smear the oil on the iron surface. So that will prevent the surface from getting rust, or you can sometime also use the brick powder or brick as such. Rub it well, as most of the people in the houses, particularly Indian houses, we are using the brick as such to clean our tawa. And that you rub it harsh, clean it with the, so that the brick material should not remain there, otherwise it will be harm into there. Nowadays we are also using the aluminium, for example in cooker. Here you have to use only the acidic material but never the alkaline material. Why I am stressing it? Because most of the detergent powder which are harsh have lot of soda or alkaline material. So that will corrode your aluminium. So we have to be very, very careful. You can use the if it is very dark, you use the tamarind water. Very easy to use it. It will again give you the shine, and you can use with the warm soapy water, rinse it and dry it. Last but not the least, in material, it's a new development in the metal surface, particularly in the kitchen articles, is the Teflon, or we popularly known as the non-sticky material. They are very, very easy to clean it. You can use the cold, hot, soapy water, rinse it. But if that scratch is there, so you are not supposed to use any kind of abrasive material, whether in the form of powder or whether in the form of scrubber. Otherwise, what will happen? Your corrosiveness will remove that coating of Teflon and inside whatever aluminium or whatever they have you, and that is very, very harmful. Once one side it is removed, it will keep on removing, and that will go into your food, into your system, and that becomes very harmful. So these are the ways you use frequently different types of thing. Now what other surfaces we are using in our homes? It may be the glass, it may be the cane, or it may be simply the plastic. Most of the home are using the glass in the windows, number one, glass as such to drink the water, and glass bowls are also frequently used. Now when we are using the glass material for the cooking or for the heating, particularly in the microwave, we must be very careful of the quality, number one, because if the quality is not good, that glass will be broken on heating. Cleaning is very easy for the glass, but care is very much required, because handling is very, very required there. If it is broken and small pieces may be on the surface, that you should remove from the surface with the wet cotton and throw that part out of it. Never reuse it, and never use your own hand to pick up the glass pieces. So that is very important. And if you are using the glass window and you need to clean it, so there are few things. You can use the simple newspaper, fold it and wet it and rub it on the glass window, and your glass will shine like anything. If there are too many grease spots, you can use the ammonia spray or ammonia mixed with the water, as I told you earlier also. And if there are lines, many times you keep on scratching or rub it with the harsh cloth, then you may find fine lines which may be visible, may not be visible. But methylated spirit, if you use them or spray on those, will cover up or clean those specks on the window. Now we come to the cane, which is very, very important. Dusting, cleaning, wiping with the clean water is important, and on a regular basis. But do not soak like you have the cane basket. Never soak in the water for the cleaning purpose. And what you can do it, you put 1 tablespoon of salt in a 1 liter of water, wash with this. You can use the warm or cold water, whatever you have it, dry it, rinse it, and then you can use it. Sometime you can also use the wax polish to polish those cane furnitures. That will prolong the life. Last but not the least is the plastic. So many things are being used in plastic. It may be your buckets, mugs, or it may be the boxes in your kitchen or any other article in your house. You just use simple warm soapy water. Warm soapy water, not hot water. Otherwise, it will de-shape or melt or may make the hole into it. And never use any kind of bleach to clean the surface, because plastic also gets very easily stained. What will you do it? Simply use the kerosene oil. Just rub the kerosene oil with the soft cloth, leave it for some time, then wash it well and dry in the sun. The kerosene smell will go away. But do not use, or rather avoid using, kerosene in the containers which are being used for keeping the food material. And kerosene is good enough for your buckets or mugs or like this thing. So these are simple variety of surfaces, variety of metals, woods, glass, plastic you are using in your home, and you have learned how to clean them and how to maintain them.